नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को आशीषित किया। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों के पास आ सकें और आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन करने पाएं। इस घड़ी हम विशेष धन्यवादित हैं अपने उन नए श्रोता मित्रों के लिए भी जो इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हम सबसे बोलने और बातचीत करने पाए, हमें आशा और हियाव देने पाए। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं और किसी प्रकार की चिंता और तनाव में हैं। आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ इब्रानियों के पत्री उसके 12 अध्याय को निकाल लीजिए। इस अध्याय का विषय है आशा। हम इब्रानियों के पत्री में व्यवहारिक क्षेत्र में हैं, जहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उत्तम लाभ और कर्तव्य लाता है। अध्याय 11 में हमने विश्वास के बारे में देखा था और अब अध्याय 12 में हम आशा के बारे में देखेंगे तथा अध्याय 13 में प्रेम के विषय चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले मसीही दौड़ को देखें। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1-2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे मित्रों, इस पत्री के प्रथम भाग में हमने विश्वास से टल जाने के खतरों को देखा था, अर्थात केवल सुनने वाले होना और उद्धार के परिणाम स्वरूप कुछ नहीं करना। पत्री के इस अंतिम भाग में लेखक निष्क्रियता के खतरों के बारे में चर्चा करेगा। वह कहता है कि हम धीमी गति की अपेक्षा दौड़ें, हम धावक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मसीही विश्वास के सबसे अधिक घोर से कांटों में निष्क्रियता का संकट सबसे बड़ा है। जी हां, जब आप वर्षा में फंस जाएं, तो ठंड के कारण आप पर मृत्यु का संकट मंडराता है, जिसका पहला लक्षण है नींद आना। आपको नींद को भगाना होगा और चलते रहना होगा। आत्मिकता में भी यही संकट हम पर मंडराता है। हमें यथाशक्ति जागते रहना है और प्रभु यीशु की संगति में चलते रहना है, अन्यथा हम सो जाएंगे। मेरे मित्रों, एक बार किसी सभा में एक महिला अपनी गवाही दे रही थी, परमेश्वर ने 20 वर्ष पूर्व मेरा कटोरा भरा था और उसमें से ना तो कुछ गिरा है और न ही उसमें अन्य कुछ आया है। एक वृद्ध पुरुष पीछे बैठा था, उसने वहीं से कहा, अब तक तो उसमें कीड़े पड़ गए होंगे। आज अधिकांश विश्वासी की यही दशा है, उनके कटोरे निश्चय ही परमेश्वर ने भर दिए हैं, परंतु वे छलकते नहीं हैं। मैं उस वृद्ध से सहमत हूँ, क्योंकि जिसके लिए वे गर्व करते हैं उसमें कीड़े पड़ गए हैं। लिखा है इस कारण, जी हाँ, इस कारण हमें आगे बढ़ना है, हमें विश्वास का जीवन जीना है। क्यों? इस कारण का अर्थ है कि पिछला अध्याय और अगला अध्याय जुड़े हुए हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। मेरे मित्रों, वर्षों तक तो मैं यही सोचता था, गवाह पुराने नियम के भक्त जन हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख अध्याय 11 में किया गया है, और वे दर्शक स्थल में बैठकर हमें जीवन की दौड़ में भागते हुए देख रहे हैं। मैं सोचता था कि हमारी यह दौड़ उनके लिए सबसे अधिक उबाऊ होगी। मैं तो आज भी नहीं मानता कि इस पद का अर्थ यह है। जब इस पद के बारे में मेरी समझ में परिवर्तन आया, तब मुझे एक अद्भुत उदाहरण याद आया, और यह एक अत्यधिक भावुक कहानी है, परंतु अर्थपूर्ण है। वर्षों पूर्व मुझे एक मित्र ने भोज पर किसी होटल में आमंत्रित किया। वहां संवाददाता एक कहानी सुना रहा था। एक मशहूर फुटबॉल प्रशिक्षक था। उसका एक खिलाड़ी दो बातों के लिए प्रसिद्ध था। पहली बात तो यह थी कि वह अपने अभ्यासों में अत्यधिक निष्ठावान था। वह सबसे पहले आता था और सबसे बाद में घर जाता था, परंतु वह दल नहीं बना पाता था। वह इसमें योग्य नहीं था। उसके बारे में प्रसिद्ध दूसरी बात यह थी कि उसका पिता मैदान में आता था और वे दोनों हाथ पकड़कर चलते थे और बातें करने में खोए रहते थे। सब उनकी इस बात को बड़ी अच्छी मानते थे। एक दिन उस प्रशिक्षक को तार संदेश मिला कि उसका पिता मर गया है। अतः प्रशिक्षक ने उसे बुलाकर यह दुखद समाचार सुनाया। वह खिलाड़ी समाचार सुनकर दहल गया और उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना पड़ा, परंतु वह अगले खेल में बेंच पर बैठा दिखाई दिया। उसने अपने प्रशिक्षक से कहा, यह मेरा चौथा और अंतिम वर्ष है, परंतु मैंने एक भी खेल नहीं खेला है। क्या आप आज मुझे कुछ समय खेलने का अवसर देंगे? प्रशिक्षक ने उसे अवसर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। प्रशिक्षक उसका खेल देखकर चकित रह गया। प्रशिक्षक ने उससे अच्छा और प्रतिभाशाली अन्य खिलाड़ी नहीं देखा था, और उसने उसे कभी टीम से बाहर नहीं किया। खेल के अंत में प्रशिक्षक ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे जैसा आज तक कोई खिलाड़ी नहीं देखा, परंतु आज से पहले तुम सबसे पिछड़े हुए खिलाड़ी क्यों थे? मुझे उत्तर दो। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पिता अंधे थे और आज पहली बार वह मुझे खेलते देखेंगे। मेरे मित्रों, यहां हमसे पूर्व के गवाह हमें देख रहे हैं। ये गवाह हमसे पहले दौड़ चुके हैं। वे अध्याय 11 में जीवन की दौड़ दौड़ रहे थे और हम देख रहे थे। वे विश्वास के साथ दौड़ रहे थे। वे जिन्हें संसार विशाल सफलता का प्रदर्शन कहता था, वे विश्वास के साथ दौड़ रहे थे। परंतु संसार जिन्हें निराशजनक विफलता कहता है, वे भी विश्वास की दौड़ दौड़ रहे थे। जबकि वे कष्ट उठाकर मारे गए, वे भी महान नायक थे। वे सब हमारे लिए गवाह हैं। हमने उन्हें अध्याय 11 में देखा है। जी हाँ, पुराने नियम में और भी अनेक गवाह हैं, क्योंकि लेखक कहता है कि उसे उनके नाम लेने का समय नहीं मिल रहा है। वे हमारे लिए साक्षी एवं उत्साह का कारण हैं कि हम विश्वास से दौड़ें और विश्वास का जीवन जिएं। मेरे मित्रों, यहां मसीही जीवन की तुलना यूनानी दौड़ स्पर्धा से की गई है। प्रभु यीशु परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। और मसीही विश्वासी को योद्धा की नाई दृढ़ खड़ा होना है। विश्वासी होने के कारण उसे चलना है और खिलाड़ी होने के कारण उसे दौड़ना है। एक दिन हम उड़ेंगे। मेरे प्रियो, यह कलिसिया के उठाए जाने का दिन होगा। हम नए यरूशलेम की ओर अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहें। यहां एक और बार वह हमें तो आओ कहता है, जो खतरे का संकेत नहीं चुनौती का है। अतः हम दर्शक स्थल से चलकर मैदान में उतर आए और परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए बुलाया है उसे करें। जैसा वह चाहता है वैसा ही हम जीवन जिएं और जैसी वह चाल चाहता है चलें और वैसा ही व्यक्तित्व रखें जैसा वह चाहता है। जी हां, तो आइए हम अपनी मसीही दौड़ दौड़ें और परमेश्वर के लिए निकल पड़ें। यही विचार यहां पर व्यक्त किया गया है। हमें धीरज धरकर दौड़ने की चुनौती दी गई है। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जो हमारे मार्ग में बाधा है, अपनी दौड़ दौड़ें। परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया है। वह हमें स्वर्ग में पवित्र स्थान में ले आया है और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, परंतु उसके इन सब वरदानों के उपरांत भी विश्वासी जन अंधकार में भटकने वाले के समान लड़खड़ाते हैं और गिर पड़ते हैं। आज के मसीही जीवन में क्या कमी है? मैं वही बात कहूंगा जिसे मैं सदा अलापता रहा हूं। समस्या यह है कि विश्वासी परमेश्वर के अनुरूप नहीं चलते हैं। वे उद्धार पाते हैं और गवाही देते हैं और बस यहीं तक रहते हैं। वे परमेश्वर के वचन का गंभीर अध्ययन नहीं करते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। वे ऐसे हैं जैसे एक दिन रात में एक बालिका बिस्तर से गिर गई और रोने लगी। उसकी माता तुरंत उसके पास आई। मेरी बच्ची, तुम बिस्तर से कैसे गिर पड़ी? उसने कहा, मेरे विचार में मैं जहां बिस्तर में घुसी थी उसके बहुत निकट सो रही थी। आज मसीही जनों की यही समस्या है। हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, क्योंकि हम उस स्थान के बहुत निकट हैं जिस स्थान पर हमने प्रवेश किया है। हमें आगे बढ़ना है। यह एक दौड़ है। मसीही जीवन एक दौड़ है। जी हां, जीते या हारें, और इस दौड़ में सबको जीतना है। कुरुंथ की कलिसिया को पौलुस लिखता है, पहला कुरुंथियों की पत्री 9 अध्याय उसके 24 और 26 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है या एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। उसने अपने कुछ अनुयायियों को झिड़का भी था। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? मेरे मित्रों, हम इन गवाहों द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। वे दर्शकगण नहीं हैं, वे हमें गवाही देते हैं। वे जोश दिलाने वाले हैं कि हम मसीही जीवन की दौड़ में दौड़ें। अब्राहम हमसे कहता है, विश्वास में बढ़ चलो। मूसा कहता है, विश्वास में बढ़ते रहो। और दानियल कहता है, विश्वास में बढ़ते जाओ। अब इसकी दो अनिवार्यताएं हैं। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। हर एक रोकने वाली वस्तु से उसका अर्थ क्या है? किसी भी दौड़ में रोकने वाली वस्तु आवश्यक है। हमें ऐसी कोई वस्तु काम में नहीं लेना है। जी हाँ, एक मशहूर धावक दौड़ रहा था और कुछ चक्कर काटने के बाद उसने अपने जूते बदले। किसी ने जूते बदलने का कारण पूछा तो उसने दोनों जोड़ी जूते उसे दे दिए। उन जूतों के वजन में बड़ा अंतर था। उसने कहा कि दौड़ में हारने के लिए यही बहुत है। मसीही जीवन में बहुत सी बातें हैं जो बुरी नहीं है, परंतु वे अनावश्यक बोझ हैं, क्योंकि उनके कारण विश्वासी दौड़ में हार जाएंगे। परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें अपना और अपना निर्णय लेना है कि हम क्या करें और क्या ना करें। मेरे प्रियो, एक युवती ने अपने पादरी साहब से पूछा, नाचना क्या गलत है? पादरी साहब ने कहा, निश्चय ही, यदि आपको दौड़ जीतना ना हो। मसीही जीवन में तो सही और गलत का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप सही का ही चुनाव करते हैं, परंतु प्रश्न यह है, क्या इससे मेरी गवाही खराब होगी? क्या इसके कारण मैं दौड़ में हार जाऊंगा? क्या यह मेरे जीवन में रोकने वाली वस्तु है? आज अनेक विश्वासियों के पास रोकने वाली वस्तुएं हैं। मैं उन बातों पर विवाद करना नहीं चाहता जिन्हें विलगाववादी विश्वासियों के लिए वर्जित करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपको नहीं करना है, परंतु मैं यह पूछता हूं, क्या आप दौड़ में हैं? क्या आप जीतना चाहते हैं? क्या आप यीशु को निहारते हैं? यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लिखा है, उलझाने वाले पाप। यह पाप शब्द सामान्य नहीं, विशेष रूप में काम में लिया गया है। यह कौन सा पाप है? पिछले अध्याय में देखें तो यह अविश्वास का पाप है। अविश्वास के समान आपको उलझाने वाली बात और कोई नहीं है। अविश्वास के साथ दौड़ना ऐसा है जैसे आपके पांव तो बोरे में हैं और आपके कंधों पर गेहूं से भरा बोरा रखा गया है। आप कभी दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरे मित्रों, अविश्वास हम में से अधिकांश की रुकावट का कारण है, और मेरा भी यही अनुभव है कि अविश्वास ने मुझे सबसे अधिक मसीही जीवन में रोका है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 3 पद। लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। पद 1 में धीरज और पद 2 में सहा शब्द वास्तव में एक ही शब्द से निकले हैं। ये विश्वासी विधि विधान और मंदिर के कार्यकलापों से निकलकर प्रभु यीशु की शरण आए थे। हेरोदेस द्वारा निर्मित यरूशलेम का मंदिर भव्यता में आश्चर्यजनक था, जबकि सन 70 में जब वह ध्वंस किया गया था तब भी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, यद्यपि वह धर्म परमेश्वर ने दिया था। इस पत्री के लिखे जाने के समय वह अशुद्ध एवं दुराचार से पूर्ण था। उसके पास धर्म तो था, परंतु इन विश्वासियों ने सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था, और अब प्रभु यीशु ही उनके लिए सब कुछ था। अब वही धर्म मंदिर विधि विधान था। जी हाँ, प्रभु यीशु में सुबोधता थी, और लेखक उस पर ध्यान देने की चर्चा करता है। उन्हें समझना था कि उसने इस पृथ्वी पर क्या क्या सहा और कैसे धीरज धरना सीखा। पत्री के आरंभ में हमें बताया गया है कि परमेश्वर होने के उपरांत भी उसने इस पृथ्वी पर दीनता सीखी कि हमारे मनुष्यत्व को धारण करके हमारे लिए कष्ट उठाए। उसने सब कुछ सहा और धीरज धरना सीखा। लिखा है कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। आप जब तक परमेश्वर के वचन के निकट ना हो कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की बातों को आपके लिए सार्थक न बनाए, तब तक आप मसीही जीवन से निराश ही रहेंगे। आपका साहस बना न रहेगा। यही कारण है कि आज अनेक निराश विश्वासी हैं। वचन और प्रभु यीशु के आने पर आपको प्रोत्साहन मिलता है, आप निराश नहीं होते हैं। मेरे मित्रों, हम आज सबसे महान दिन में पाए जाते हैं और हम इस दिन को महत्वपूर्ण जानें, क्योंकि हम उस दौड़ में हैं जिसे मुझे और आपको जीतना है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका विश्वास कहाँ है, आप किस प्रकार के विश्वास की दौड़ जी रहे हैं, या आप निराशपूर्ण जीवन जी रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम निराशा की नहीं परंतु आशा की दौड़ दौड़ें, विजय और जीत की दौड़ दौड़ें, ताकि हम अपने जीवन में उन महान शांति और आनंद को प्राप्त कर सकें जिसे परमेश्वर मेरे विश्वासी के जीवन में देना चाहता है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के निकटता में रहकर अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दे सकें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ उठाया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया। हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ।